कल हम ये देख रहे थे कि भगवान असुरों का वध क्यों करते हैं। आठ कारण बताए गए थे और इनके ऊपर चर्चा हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में कई असुरों का वध किया और बड़ी रोमांचक रम्य कथाएं हैं, सब सुनने में बड़ा आनंद आता है। बार बार सुनने में आनंद की वृद्धि होती है, क्योंकि ये है कृष्ण कथा या कृष्ण लीला के गुण कि जितना सुने उतने ज्यादा रम्य लगने लगते हैं। जब वसुदेव मथुरा गए थे कृष्ण के नामकरण के बहुत जल्दी ही उसके पश्चात, उनकी अनुपस्थिति में यहां गोकुल में कई घटनाएं होने लगी। कंस तो वैसे ही पहले से अपने असुर मित्रों को इधर उधर भेज रहा था और कह रहा था कि ये कृष्ण का जन्म तो कहीं हुआ है, देवकी का आठवां पुत्र कहीं तो है, इसलिए सारे व्रज भूमि में जो भी बालक हैं उनकी हत्या करो और विशेषतः उन शिशुओं की जिनका जन्म अभी पिछले दस दिन में हुआ है। ऐसे आदेश देने के बाद ये सारे असुर सब जगह ब्रजभूमि में फैल गए और खास करके कंस की एक सहायक थे जिनका नाम था पूतना, बड़ी राक्षसी थी वो। और पूतना का काम था कि अलग अलग जगह जाकर छोटे छोटे बालकों की हत्या करना, उनका खून पी जाना, जैसे राक्षस किया करते हैं, और ऐसे बहुत ही क्रूर तरीके से बालकों को मार डालना, ये पूतना का काम था। वास्तव में ये पूतना एक चुड़ैल थी, तो ऐसे कई चुड़ैल कंस के साथी थे। हम किसी व्यक्ति को उसके साथियों के दृष्टि से समझ सकते हैं, जैसे उसके साथी होते हैं वैसे वही आदमी रहेगा। तो जो व्यक्ति अपने साथ में चुड़ैलों को रखता है और असुरों को रखता है तो वो भी तो वैसे ही प्रवृत्ति, वैसे ही मानसिक स्थिति का होगा। तो ये चुड़ैल पूतना बड़ी शक्तिशाली योगिन भी थी। ऐसे देखा जाता था प्राचीन काल में कि जो असुर और चुड़ैल हुआ करते थे बड़े शक्तिशाली थे, सारे योग सिद्धियों से युक्त थे। पूतना जो चुड़ैल थी वो एक खेचरी थी। खेचरी मतलब क्या है आप जानते हैं? पांचवा पंच महाभूत कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ना, भूमि आप नलवायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टरा। तो पांच महाभूत हैं जो स्थूल हैं और तीन सूक्ष्म हैं। पांच महाभूतों में से पांचवा कौन सा है? खम। खम अर्थात आकाश। और खम में जब कोई रहता है, जब संबोधित करते हैं तो हम उसे खे कहते हैं। शब्द खे पौरुषम ऋषु, जैसे भगवान कहते हैं खे के भीतर में जो शब्द है वो मैं हूं। जो खे में, खम में, इसको खे कहते हैं। तो खे में चरी, चरी मतलब चरण करने वाली या उड़ने वाली, तो खे चरी। तो खे चरी मतलब जो आकाश में उड़ने वाली है, अंतरिक्ष में जाकर भी भ्रमण करती है, वो है खेचरी। तो पूतना जैसे चुड़ैल ऐसे कई हुआ करते थे जो अंतरिक्ष में भी उड़ा करते थे, ऐसे उनकी अद्भुत शक्ति सिद्धि प्राप्त हुई थी उनको। तो ये उड़ा करती थी और अपने इच्छा के अनुसार अपने रूप को बदल सकती थी। और उनके भ्रमण करने का तरीका बड़ा विचित्र था। किसी गिरे हुए वृक्ष के एक टूटे हुए शाखा के ऊपर बैठकर वो सफर करते थे, जैसे हम गाड़ी में बैठ के सफर करते हैं, कोई साइकिल मोटरसाइकिल या कोई हवाई जहाज। तो ऐसे पूतना जैसे चुड़ैल जो हुआ करते थे, वो ऐसे एक लकड़ी या डंडे या पेड़ के शाखा के ऊपर बैठकर वो उड़ते थे। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भारतवर्ष में उत्तर और पश्चिम दिशाओं में, खास करके राजस्थान के उस ओर, आजकल भी ऐसे चुड़ैल मिलते हैं जो कि ऐसे लकड़ी के ऊपर बैठकर उड़ते हैं। ये जो ऐसे चुड़ैल की कथा पश्चिम देशों में भी है, हमें अभी तक याद है कि हम जब बच्चे थे और स्कूल में पढ़ा करते थे तो जो ऐसे पश्चिम देशों के जो कथाएं सुनने में आती थी उनमें भी ऐसे चुड़ैलों का वर्णन आता था। मतलब इसमें कोई सत्य है, सारे जगह सारे पृथ्वी लोक में अलग अलग प्रांतों में एक प्रथा एक जैसी कथा हो गई है ऐसे चुड़ैलों की। तो पूतना अंतरिक्ष से आई और अंतरिक्ष जब आई तो उनको कंस ने कहा कि अभी ये आपको काम करना है, जाकर व्रज भूमि में कृष्ण को ढूंढ निकालना है और कृष्ण को मार डालना है। तो पूतना ने क्या किया, अपने रूप को बदल दिया, बड़ा सुंदर रूप बनाया। जब परीक्षित महाराज ने सुना कि अभी कंस चुड़ैलों की सहायता लेने जा रहे हैं तो शायद उनको चिंता हुई होगी कि क्या होगा कृष्ण का। तो उस समय सुखदेव महाराज ने उनको आश्वासन दिया कि चिंता नहीं करो, जहां श्री कृष्ण का नाम गूंज रहा है, जहां श्री कृष्ण की कथाएं चल रही हैं, सुनाई दे रही हैं, बोले जा रहे हैं, तो वहां पर कोई चुड़ैल कोई भूत प्रेत राक्षस इत्यादि वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकते, वह ऐसे प्राणियों का कोई डर नहीं है। तो इस प्रकार से पूतना जब ब्रज में गई तो उस समय जानती थी कि अगर राक्षसी के रूप में जाती तो तुरंत उनका काम सफल नहीं होता। तो एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में उन्होंने अपना रूप बदल दिया और इतना सुंदर रूप था और अपने आप को इतने अच्छी तरह से सजाया हुआ था पूतना ने कि जब वो गोकुल में आई और बिना अनुमति के प्रवेश कर दिया गोकुल में और सीधे नंद महाराज के घर के पास चली गई तो सभी ब्रजवासियों ने सोचा कि ये साक्षात लक्ष्मी देवी है जो अपने हाथ में कमल पुष्प धारण किए अपने पति कृष्ण की सेवा के लिए जा रही है। इतनी सुंदर थी और इतने अच्छी तरह से सजा के अपने आप को आई थी और ऐसे सौंदर्य को देखकर सारे ब्रजवासी चकाचौंध रह गए और इसीलिए किसी ने भी पूतना को कुछ कहा नहीं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वास्तव में पूतना के हृदय में बहुत ही बुरे विचार थे कि कृष्ण की हत्या किस प्रकार से की जाए, शिष्यों की हत्या किस प्रकार से की जाए। तो बाहर से लगता था कि बहुत सुंदर स्त्री है, माता के रूप लेकर आई है और जो है ममता की भावना है इसके हृदय में, लेकिन वास्तव में पूतना का तीक्ष्ण चित्त था, बहुत ही क्रूर हृदय लेकर आई थी लेकिन बाहर से ममता का प्रेम जैसे मां का प्रेम लेकर आई थी। प्रभुपाद जी सावधान करते हैं कि कभी कभी जब स्त्री बहुत सुंदर होती है तो लोग माया मोहित हो जाते हैं, उसके बाहरी सौंदर्य से प्रभावित हो जाते हैं और ये नहीं समझ पाते कि इसके हृदय में क्या छुपा हुआ है। तो इस प्रकार से पूतना जब अंदर गई तो किसी ने नहीं रोका, सोचा कि ये इतनी सुंदर स्त्री है, मां की तरह आई है, लक्ष्मी देवी है साक्षात, तो हम इसको क्यों रोकें। तो माता यशोदा भी वहां थी, रोहिणी देवी भी वहां थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। हां, रोहिणी देवी और माता यशोदा माया मोहित तो नहीं थे, लेकिन वो योग माया के प्रभाव में अवश्य थे, क्योंकि अगर उस समय वो उसको रोक देते तो कृष्ण की लीला आगे बढ़ती कैसे, पूतना का वध करते कैसे भगवान। तो तुरंत अंदर जाकर पूतना ने कृष्ण भगवान की ओर आगे बढ़ने लगी, और जैसे बढ़ने लगी तो तुरंत पूतना के हृदय में एक विचार आया, आखिर भगवान तो अंदर को सबसे मार्गदर्शन करते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, सबको ज्ञान देते हैं, स्मृति देते हैं, विस्मृति देते हैं। जैसे ही पूतना ने जाकर कृष्ण का मुखारविंद देखा तो तुरंत मन में यह विचार आया, अरे ये तो साधारण बच्चा नहीं है, ये इसके अंदर ऐसे शक्ति है जो छुपी हुई है, जैसे कि एक बहुत ही शक्तिशाली अग्नि की शक्ति राख से कभी कभी ढकी हुई जाती है, इस प्रकार से इस बालक की शक्ति उसके मासूम चेहरे से ढकी हुई है। इसके अंदर ऐसे शक्ति है कि वो सारे ब्रह्मांड को नाश कर सकता है, और ये बालक यहां आया है सारे राक्षसों और असुरों का वध करने के लिए। तो तुरंत पूतना के मन में ये विचार आया, किसने विचार डाल दिया, भगवान ही थी तो डाला हृदय से। तो पूतना पहचान गई कि ये साक्षात हरि है, साक्षात भगवान है, लेकिन फिर भी तीक्ष्ण चित्त वाली थी तो आगे बढ़ी, और जब आगे बढ़ी और भगवान ने कृष्ण ने उनको देखा तो तुरंत अपने आंखें बंद कर लिए। अभी आचार्य सुंदर सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें क्यों बंद कर दी। आचार्यों के तात्पर्य से कृष्ण लीला का मिठास बढ़ जाता है, और जैसे जैसे कृष्ण लीला तो वैसे ही अमृत के समान है। शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम अहो मोहो रुसिका भवि भाविका। सुखदेव जी ने जब व्यासदेव से प्राप्त किया हुआ भागवत सुना, उसको अंदर उन्होंने पचन किया और फिर उसको उन्होंने इसका वर्णन किया तो और भी रसीला हो गया, और भी रसमय हो गया। तो जैसे जैसे आचार्यों की परंपरा में कृष्ण लीला चलती जाती है, तो और जैसे अपने साक्षात्कार से आचार्य शुद्ध भक्त इन लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं, तो फिर इसका मिठास, इसका रस बढ़ जाता है। तो जो श्रोतागण होते हैं इस रस का पान करते हैं और सोते नहीं हैं, इसलिए उनको नींद नहीं आती ऐसे रस में कथा सुनने में। आचार्यों ने खास करके इस रस को बढ़ाया हुआ है। तो इस प्रकार से सुखदेव महाराज जी ने जैसे रस को, रस की वृद्धि की, आनंदाबुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, आनंद अम्बुधि वर्धनम, तो आचार्य भी ऐसे रस के सागर की वृद्धि करते जा रहे हैं। तो ऐसे कई आचार्य हुए जिन्होंने पूतना के वध के ऊपर टीका की, तो आचार्यों ने, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग सुंदर ढंग से टीका की। एक ने कहा है, एक आचार्य ने कहा कि कृष्ण भगवान ने पूतना को देखकर आंख बंद इसलिए किए कि उन्होंने सोचा कि अरे बाप रे, भयंकर राक्षसी आ गई है। जैसे बालक घबरा जाते हैं ना कोई भयंकर व्यक्ति को देखकर, सोचा अरे ये तो राक्षसी है, इसने इतने सारे मासूम बालकों का वध किया है, तो ये भयंकर राक्षसी को अब नहीं देखेंगे। उन्होंने आंख बंद कर लिए, क्योंकि एक साधारण बालक का रूप धारण कर रहे थे कृष्ण भगवान। और एक आचार्य बताते हैं कि कृष्ण भगवान ने सोचा कि वास्तव में ये तो स्त्री है, और मुझे, मैंने तो व्रत ले लिया है कि मैं यहां आकर सारे असुरों का वध कर लूंगा, लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया हुआ है कि स्त्री को नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, बालक को नहीं मारना चाहिए, और मुझे तो ये पूतना राक्षसी को जो सुंदर रूप धारण करके आई है, इस स्त्री की हत्या मुझे करनी होगी। तो ये कैसे, ये तो अजीब बात है, अजीब मुसीबत है मेरे लिए। तो आंख ही बंद कर लिए कृष्ण भगवान ने। और एक आचार्य बताते हैं कि कृष्ण भगवान ने इसलिए अपने आंखें बंद कर दी कि पूतना हालांकि राक्षसी थी लेकिन एक मां का रूप लेकर आई थी। इस इच्छा लेकर, ये इच्छा लेकर आई थी कि कृष्ण को मेरा स्तनपान कराऊं, मेरा दूध पिलाऊं, जो कि मां का स्थान होता है, धात्री का स्थान होता है। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि ये तो मेरे मां के समान है। वैदिक शास्त्रों में बताया जाता है कि 7 माताएं होती हैं हर एक व्यक्ति के। एक माता तो वो है जो हमें जन्म देती है, दूसरी है गुरु की पत्नी, तीसरी है ब्राह्मण की पत्नी, चौथे है राजा की पत्नी, 5वीं है धात्री, 6ठी है पृथ्वी माता और 7वीं है गो माता। तो 7 प्रकार की माताएं होती हैं हर एक व्यक्ति। और हालांकि उनकी माता तो थी देवकी, लेकिन यहां यशोदा माता उनकी मां के समान थी और पूतना एक धात्री के रूप में आई। धात्री भी मां के समान है। तो भगवान सोचने लगे कि स्त्री का वध करना यह तो पाप है ही, लेकिन उसके ऊपर मां का वध करना ये तो कितना घोर पाप होगा। तो कृष्ण भगवान सोच रहे थे लेकिन क्या करें, असुरी है, मुझे वध तो करना चाहिए लेकिन मां का वध है, कैसे, क्या अजीब मुसीबत है। तो कृष्ण भगवान ने अपने आंखें बंद कर दिए तो ऐसे मुझे संकट में न हो। और एक आचार्य बताते हैं कि कृष्ण ने आंखें बंद इसलिए की क्योंकि वो समझ गए कि पूतना समझ गई है कि मैं भगवान हूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि पूतना डर के मारे वहां से चले जाए। ये तो साक्षात भगवान है, ये तो मेरा ही वध कर डालने वाले हैं, कहीं उनका, कहीं पूतना का हौसला ना मिट जाए, कम हो जाए। तो पूतना को अंदर से हौसला देने के लिए कृष्ण भगवान ने अंदर से अपनी आंखें बंद कर दी ताकि अपनी आंखें खुली रहीं और आंखों में आंख मिले और पूतना को पता चले कि ये मेरे मृत्यु है यहां। तो कृष्ण नहीं चाहते थे कि ऐसा हो कि पूतना भाग जाए, भाग जाती तो कैसे वध करते। हाँ, वैसे भी कृष्ण वध कर सकते थे, कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन इस प्रकार से वध नहीं करते कि जैसे वो चाहते थे। तो देखिए ऐसे सुंदर सुंदर लीलाओं के दही का मंथन करते हैं, दूध का मंथन करते हैं आचार्य, और उसको और भी मधुर 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 बनाते जाते हैं। तो इस प्रकार से पूतना सामने आई और कृष्ण को हाथ में लिया। उस समय भी माता यशोदा और रोहिणी देवी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि योग माया के प्रभाव में वही सोच रहे थे कितनी सुंदर स्त्री है, कितने मां की भावना से के लेकर आई है, चेहरे से लगता है कि ये तो मां ही है इसकी। तो इस प्रकार से अभी तक यशोदा माता और रोहिणी देवी ने कुछ नहीं कहा। अन्य सारे गोपियां थी वहां पर उपस्थित, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। और पूतना ने क्या किया, बाल कृष्ण को उठाया, अपने गोदी में रख दिया। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं जब कोई व्यक्ति अगर एक सांप को रस्सी समझकर अपने गोद में रख ले तो क्या करता है, वो मृत्यु को निमंत्रण देता है, मृत्यु उसके लिए निश्चित है। तो पूतना ये नहीं जानती थी कि ये कृष्ण, बाल कृष्ण जो है ये मूर्तिमान मृत्यु है मेरे लिए। और इसी कृष्ण रूपी सांप को उन्होंने उठाकर अपने गोदी में रख दिया और इस तरह से अपने ही मृत्यु को करीब लाया। तो कृष्ण भगवान जब वहां गोदी में आए, उन्होंने आंख खोली और इस समय पूतना ने अपने स्तनों पे जो जहरीला विष लगाया हुआ था, फिर कृष्ण भगवान को स्तनपान कराना आरंभ किया। और जैसे आरंभ किया और कृष्ण भगवान ने पान करना शुरू कर दिया तो बड़े क्रोध से स्तनपान करना शुरू किया। कृष्ण भगवान को क्रोध क्यों आया, इसलिए नहीं आया कि पूतना मुझे मारने आई है। आचार्य बताते हैं कि भगवान को क्रोध इसलिए आया कि ये जो असुरी है, चुड़ैल है, इसने इतने सारे मासूम बच्चों की हत्या की है ब्रजभूमि में। मासूम बच्चों की हत्या करने वाली ऐसी जो पापी व्यक्ति है उसको तो मृत्यु दंड ही देना चाहिए, उसको प्राण त्यागना चाहिए, यही एक उसके लिए दंड है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध से स्तनपान करना आरंभ किया। और जैसे भगवान को क्रोध आता है तो क्या शक्ति होगी उनकी। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध से स्तनपान करना आरंभ किया तो पूतना को इतना दर्द होने लगा, इतना दर्द होने लगा कि जोर से वो चीखने लगी। चीखते चीखते उनको ऐसे लगा कि मेरे प्राण ही निकल जा रहे हैं। और वास्तव में जैसे भगवान श्री कृष्ण पूतना के स्तन से दूध का पान कर रहे थे वैसे वैसे वो पूतना का प्राण ही चूसे जा रहे थे। और जैसे पूतना को लगा कि मेरे प्राण ही निकल रहे हैं शरीर से, इतना भीषण उनको कष्ट होने लगा, पूतना को कष्ट होने लगा कि वो कूद पड़ी ऊपर, और ऊपर कूद के घर के बाहर दौड़ने लगी। घर के बाहर ही नहीं लेकिन ब्रज गांव के, गोकुल गांव के बाहर भी दौड़ते हुए चली गई बाल कृष्ण को लेकर। और गांव के बाहर जाकर वहां गाय चराने के लिए जो खेत थे उस पर जाकर गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुंच मुंच अलम इति प्रभाषिणी। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि छोड़ो छोड़ो मुझे स्तनपान करना बंद करो हे बालक। प्रभाषिणी जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन कृष्ण छोड़ने का नाम न ले। कृष्ण एक बार किसी को पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। इसलिए हम सब भी कृष्ण के चरण कमलों में अभी अटक गए। आपको अभी भक्ति छोड़कर जाना भी है तो नहीं जा सकते, क्योंकि कृष्ण जिसको एक बार पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। अगर भी कोई व्यक्ति कहे है कृष्ण मुझे छोड़ो छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे कृष्ण। इसलिए अभी आपको पीछे मुड़कर भी जाना है तो अभी बहुत देर हो गई, अभी नहीं, आपको कृष्ण भक्ति में आने के पहले सोचना चाहिए था। अभी आ गए तो अभी फंस गए आप। लेकिन देखिए पूतना ऐसे द्वेष भावना से आए थे, फिर भी उनको कितना फायदा हुआ आगे चल के देखेंगे। तो पूतना ऐसे चिल्ला रही थी। अब पूतना के अंदर ऐसी शक्ति थी कि वो अपने रूप को बदल सकती थी, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो अपने नए रूप को नहीं बनाए रख पाई और उसका जो आदि रूप था राक्षसी का वो प्रकट हो गया। उसकी योग शक्ति अभी खत्म हो गई और उसका आदि रूप जो है राक्षसी का वो प्रकट हुआ। और कितना लंबा था वो, कितना बड़ा था, 12 मील लंबा। साधारण राक्षसी नहीं थी, 12 मील। और जैसे ही अपने रूप को उन्होंने विस्तार किया पूतना ने, तो जब बड़ा शरीर प्रकट होने लगा तो 12 मील में जो भी वृक्ष इत्यादि से सब टूट के इधर उधर बिखर गए और पूतना का भयंकर राक्षसी का रूप प्रकट हो गया। और सुखदेव जी बड़े सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि पूतना का शरीर कैसा था। उसके जो दांत थे मानो कि बड़े बड़े हल किए हुए सड़क थे, और उनके नसिका थे बड़े बड़े पहाड़ के गुफे जैसे थे, उनकी सांस थी जैसे मानो बड़े तूफान, उनकी आंखें जो थी मानो कि बहुत गहरे अंधकूप, और उसके जो बाल थे लाल लाल रंग के और इधर उधर बिखरे हुए थे सारे ब्रज भूमि में। किसी का शरीर 12 मील का होता है तो बाल कितने लंबे होंगे। और उनके स्तन जो थे वो पहाड़ की तरह थे और उस पहाड़ के ऊपर कृष्ण भगवान बाल स्वरूप में खेल रहे थे, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है। इससे ये पता चलता है कि पूतना जैसे असुरी चुड़ैल जो होते हैं वो अपना रूप बदल सकते हैं, रूप को बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर को कम बड़ा कर सकते हैं, और जितना बड़ा अपने शरीर को करते हैं उसकी शक्ति भी बढ़ जाती है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं हुआ। पूतना ने स्वाभाविक तौर से अपने शरीर को बड़ा इसलिए किया कि वो सोचती थी कि शरीर बड़ा करूंगी तो शक्ति बढ़ जाएगी, मैं कृष्ण का सामना कर पाऊंगी, कृष्ण को हटा पाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। तो ये है अंतर अंतर बड़े बड़े योगी चुड़ैल असुरों किसे के बीच में और कृष्ण के बीच में। कृष्ण किसी भी रूप में क्यों ना आए, कितने भी बड़े या छोटा बड़ा या छोटा उनका शरीर क्यों ना हो, कौन से भी अवतार में क्यों ना आए, किसी भी आयु के क्यों ना प्रतीत हो, कृष्ण की शक्ति उतनी ही रहती है। पूतना को ये आवश्यक पूतना ने यह आवश्यक समझा कि मैं शरीर को बड़ा करूं कृष्ण का सामना करने के लिए, लेकिन कृष्ण ने आवश्यक नहीं समझा कि मैं भी मेरे शरीर को बड़ा करूं पूतना का सामना करने के लिए। कृष्ण अपने बाल स्वरूप में ही काफी थे पूतना के लिए, इसलिए कृष्ण भगवान वैसे के वैसे वहीं उसके ऊपर स्तन के ऊपर रहे। और पूतना के भयंकर चीखों को सुनकर और उसके शरीर के कंपन से सारे पृथ्वी के पहाड़ जो है हिलने लगे, और बताया जाता है कि अंतरिक्ष में भी जो ग्रह है वो भी हिलने लगे, इतने भीषण उसके चीख था। और उस समय इन चीखों को सुनकर ब्रजवासी कितने घबरा गए इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। कभी कभी जब वज्र की गड़गड़ाहट होती है, बादल की गड़गड़ाहट होती है, तो कभी कभी हम घबरा जाते हैं। तो पूतना के चीख सुनकर ब्रजवासी इतने घबरा गए, उनको हृदय जोर जोर से धड़कने लगे और सब भागे कि कृष्ण कहां है, क्या हो गया, कहां गई ये राक्षसी हमारे कृष्ण को लेकर। और भागते हुए गए और आखिर क्या देखा उन्होंने कि पूतना राक्षसी, भीषण शरीर वाली राक्षसी, जिसको देखकर उनका भय और भी बढ़ गया। लेकिन ऐसे भीषण राक्षसी जो कि लेटे हुए अपने पैर और हाथ को फैलाकर जिसका मुंह खुला हुआ है, वह आराम से कृष्ण भगवान स्तन के ऊपर सवार होकर खेल रहे हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, और हंस रहे हैं, आनंद में है कृष्ण भगवान। तो बहुत ही शांत हुए, बहुत ही उनको अच्छा लगा, ब्रजवासियों को, गोपियों को, कि हमारे कृष्ण अभी तक अच्छा है, कुछ हुआ नहीं है। तो उन्होंने कृष्ण को नीचे लाए, नीचे लाकर फिर कहने लगे कि अभी इसके संरक्षण के लिए हमें मंत्रों का उच्चारण करना होगा, न्यास मंत्र बोलने होंगे, आचमन करना होगा, इसको नहलाना धुलाना होगा। तो इस प्रकार से कृष्ण को जब वो नीचे लाई तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले गोमूत्र से कृष्ण का अभिषेक किया और फिर गाय के पूंछ से उनका ऐसे उनके ओर ऐसे घुमाया ताकि अशुभ सारे चीजें खत्म हो जाए और उसके संरक्षण हो। फिर गोबर लेकर लेप लगाया और अलग अलग शरीर के अंगों में तिलक लगाया। इसके बारे में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर टीका करते हैं। वो बताते हैं कि प्राचीन काल में वैदिक पद्धति के अनुसार घर घर में भले वो अशिक्षित भी स्त्री हो, भले कोई साधारण भोले भाले जो गांव की भी स्त्री हो, जो आधुनिक सभ्यता के हिसाब से बहुत पिछड़े हुए भी लगे क्यों ना हो, लेकिन इनको सबको ये ज्ञान था कि कैसे बालकों की रक्षा करनी है केवल गाय की सहायता से, कैसे मंत्रों का उच्चारण करना है, कैसे गोबर से, गोमूत्र से, गाय की पूंछ से हम बालकों की रक्षा कर सकते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि ये वैदिक सभ्यता का एक अंग है और सभी को सीखना चाहिए, खास करके जो माताएं हैं उनको सीखना चाहिए। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे मंत्रों का उच्चारण करने से, न्यास मंत्रों का उच्चारण करने से, गोमूत्र, गोबर इत्यादि की सहायता लेने से बड़े खतरे से बड़ा संरक्षण हो सकता है। आजकल हम केवल टॉनिक दवाई के ऊपर निर्भर हैं बालकों की रक्षा करने के लिए, लेकिन प्रभुपाद बताते हैं वैदिक सभ्यता क्या है, संरक्षण करना है तो गोमूत्र, गोबर और गाय की सहायता से की जाती है और विष्णु के नाम से। तो गाय और भगवान, ये दो चीजों की सहायता लेकर सारी वैदिक सभ्यता चलती है। तो गाय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। केवल हमारे ईंधन के लिए के और या दूध के लिए गोबर और गोमूत्र नहीं इस्तेमाल किया जाता, और बहुत सी चीजें हैं। गाय के ऊपर ये पूर्ण सभ्यता एक संस्कृति आधारित है जिसको हम भूल चुके हैं। इसलिए प्रभुपाद जी शोक करते हैं कि आजकल मैं गृहस्थी में किसी को ये नहीं मालूम मंत्रों का उच्चारण कैसे करना, आचमन कैसे करना, और विष्णु मंत्र का उच्चारण करके बच्चों के संरक्षण कैसे करना कोई नहीं जानता। आजकल घरेलू जीवन मतलब इंद्र तृप्ति का जीवन, बस इतना ही जानते हैं। धर्महीन ज्ञानहीन इंद्र तृप्ति से पूर्ण एक जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन वैदिक सभ्यता के अनुसार कैसे हमें जीना चाहिए ये नहीं जानते। तो वैदिक सभ्यता कितनी सूक्ष्म है, कितना ऊंचा है ये। तो साधारण घर घर में भी महिलाएं ये सब चीजें जानती थी। तो जब गोबर का तिलक लगा रही थी माता यशोदा और अन्य गोपीगण, तो माता यशोदा ने पहले आचमन किया, 2-3 बूंद पानी लिए, जल लिया। पहले सारे गोपियों ने अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अपने शरीर और हाथों को, जिसको अंग न्यास और कर न्यास कहते हैं। पहले अंग की शुद्धि, फिर कर अर्थात हाथों की शुद्धि। तो ऐसा शुद्ध करने के बाद में फिर उन्होंने कृष्ण को भी शुद्ध कर लिया इसी प्रकार से, और फिर विष्णु मंत्रों का उच्चारण किया। अलग अलग प्रकार के विष्णु मंत्र होते हैं, ऐसे हम भी हमारे तिलक हमारे अंग के ऊपर तिलक लगाते हैं, विष्णु तिलक लगाते हैं, 12 जगह में लगाते हैं, और हर जगह में जब हम लगाते हैं तो विष्णु के नाम का उच्चारण करते हैं। तो विष्णु तिलक लगाने से हम अपने शरीर को भगवान का मंदिर संबोधित करते हैं, और साथ साथ में शरीर के अलग अलग अंगों का संरक्षण भी होता है। तो विष्णु मंत्र अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम जो विष्णु मंत्र कहते हैं वो एक प्रकार के विष्णु मंत्र हैं, लेकिन अलग अलग तरह भी होते हैं। तो माता यशोदा ने कहा कि वो भगवान जिनका नाम अजय है वो श्री कृष्ण के पैरों की रक्षा करे, वो भगवान जिनका नाम मणिमान है वो भगवान श्री कृष्ण के घुटनों की रक्षा करे, वो भगवान जिनका नाम अच्युत है वो भगवान के जंघों को रक्षा करे। इस प्रकार से भगवान के अलग 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 नाम लेकर उन्होंने श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के अलग अलग अंगों की रक्षा के लिए उनकी याचना की। तो भगवान सोते हुए कृष्ण को ऐसे रक्षा करे, खेलते हुए कृष्ण को ऐसा रक्षा करे, बाएं तरफ से ये भगवान रक्षा करे और दाएं तरफ से ये भगवान रक्षा करे, ऊपर से ये करे, नीचे से ये करे। इस प्रकार से अलग अलग दिशाओं से अलग अलग परिस्थितियों में कृष्ण के अलग अलग अंगों के संरक्षण के लिए माता यशोदा ने भगवान विष्णु के अलग अलग नामों का उच्चारण किया, और ऐसे गोबर का लेप और तिलक लगाते गए। और जब ये हो गया तो माता यशोदा ने सोचा कि अब मेरा बाल कृष्ण सुरक्षित है, अब कुछ नहीं होगा इसे। वास्तव में यही चीज है, हमारे सुरक्षा केवल भगवान के ऊपर आधारित है। तो इस प्रकार से माता यशोदा ने फिर कृष्ण को अपने गोदी में लिया और स्तनपान कराना आरंभ किया। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब बालक स्तनपान करता है इसका मतलब है कि उसका स्वास्थ्य ठीक है। तो इस समय माता यशोदा समझ लगे कि ठीक है, अभी कृष्ण ठीक ठाक है, कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। और इन सारे मंत्रों से माता यशोदा ने यह भी प्रार्थना की कि जो भी और चुड़ैल डाकनी और जो भी ऐसे भूत प्रेत पिशाच हैं ये अभी यहां नहीं आए, कृष्ण को छुए नहीं, कृष्ण इनसे सुरक्षित रहे। और वास्तव में जहां विष्णु का नाम का उच्चारण होता है वहां ऐसे डाकनी चुड़ैल वगैरह प्रवेश नहीं कर सकते। तो इस तरह से कृष्ण गोपियों के संग में रहे। उधर जो वसुदेव थे गोप मित्रों के साथ में मथुरा गए हुए थे गर्भ देने के लिए, तो उनकी अनुपस्थिति में ये सब घटनाएं हुई। उनको तो बिल्कुल कोई धारणा नहीं थी कि ऐसे कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे वो मथुरा से निकले थे, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि नंद महाराज जब वहां गए थे तो वसुदेव ने उनको बताया था कि देखो हो सकता है कि गोकुल में भी कुछ उत्पात हो सकता है, जल्दी से आप चले जाओ। तो वसुदेव ने, नंद महाराज को वसुदेव की ये बातें याद थी। तो जैसे जैसे नंद महाराज मथुरा से गोकुल लौटते हुए आ रहे थे तो उनके मन में यह विचार आया कि वसुदेव ने तो ऐसे बातें कही हैं, तो मुझे भगवान का आश्रय लेना चाहिए कि मेरे कृष्ण को कुछ ना हो। तो ऐसे सोचते सोचते आ रहे थे और जैसे ही सारे गोपगण आए गोकुल के बाहर, तो गोकुल के बाहर क्या देखते हैं, एक विशाल भयंकर असुरी राक्षसी का शरीर पड़ा हुआ है, जिसके हाथ पैर फैले हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं और आंख खुले हैं, मुंह खुला है, और इतना भीषण शरीर। वो देखकर घबरा गए कि क्या हो गया। और जब उनको पता चला तो नंद बाबा बहुत ही शांत हुए, उनको संतुष्ट हुए कि अभी मेरा कृष्ण तो बच गया। और कृष्ण को हाथ में लेकर उसका सर सूंघने लगे। और उस समय नंद बाबा इतने सरल थे, इतने भोले भाले थे, उनको ये कोई कल्पना नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था कि ये पूतना ये मेरे घर में आई कैसे, उनके अनुमति कैसे मिली और किस प्रकार से ये मेरे बालक को लेकर, बच्चे को लेकर बाहर आई, कुछ नहीं जानते थे। ये केवल ये सोचते थे कि कोई आके मेरे घर में कुछ उत्पात करके, हंगामा करके चला गया, कृष्ण बच गया। और ये नहीं जानते थे कि वास्तव में कृष्ण भगवान पूतना का वध करना चाहते थे और किया भी इस प्रकार से। नंद बाबा सोचते थे कृष्ण बच गए, बस मेरे कृष्ण हमारे साथ में है। ये थी ब्रजवासियों की सरलता, सरल मासूम जैसे थे सारे ब्रजवासी का। ऐसे वृत्ति को, ऐसे मनोवृत्ति को पसंद करते हैं कृष्ण भगवान। तो जब नंद बाबा कृष्ण के सर ऐसे सूंघ रहे थे, उधर बाकी अलग अलग ब्रजभूमि के गांवों से लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है। क्योंकि गोकुल के जो निवासी थे उन्होंने क्या किया कि पूतना के मृत शरीर को वो काटने लगे और उसको जलाने लगे। क्यों? क्योंकि जब सांप को हम मारते हैं, ऐसे कहते हैं कि सांप को काटना चाहिए मारने के बाद में, फिर जला देना चाहिए। क्यों ऐसे करते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हमने सोचा कि सांप मर गया लेकिन सांप वास्तव में नहीं मरा हो और फिर से जाग कर वो कोई आक्रमण करे, हमला करे, तो खतरा है इसमें। इसलिए तो सांप को काट ही डालते हैं और जला डालते हैं उसके शरीर को। तो इसी प्रकार से इन्होंने सोचा कि ये सांप जैसे खतरा है इस पूतना से, न जाने मरी हुई है नहीं है, पता नहीं, लगता है मृत है लेकिन हो सकता है चुड़ैल है, न जाने कुछ आगे कर सकती है। तो उन्होंने काट दिए पूतना को, शरीर को, और काट कर जला डाला। जब पूतना के शरीर के अंगों को जलाया गया तो बहुत विचित्र बात हुई। क्या हुई? कि ऐसा सुगंध आया कि मानो अगुरु जो एक जड़ी बूटी होती है जिसकी बहुत अति सुगंधित जो ये जड़ी बूटी होती है, अगुरु जैसे सुगंध आने लगा पूतना के जलते हुए शरीर से। और अलग अलग ब्रजभूमि के गांवों से लोग इधर उधर से आने लगे कि ये सुगंध कहां से आ रहा है। और सारे ब्रजवासी आश्चर्यचकित रह गए कि पूतना के शरीर से इतना सुगंध आ रहा है, कैसे संभव है। तो सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पूतना हालांकि चुड़ैल थी, असुरी थी, फिर भी कृष्ण का स्पर्श हुआ था, कृष्ण ने उनका स्पर्श किया था, स्तनपान किया था। जब किसी व्यक्ति का स्पर्श भगवान श्री कृष्ण कर देते हैं तो फिर वो भौतिक नहीं रहते, दिव्य रहते, दिव्य बन जाते हैं। तो हालांकि पूतना एक असुरी थी, अपने हृदय में कृष्ण को मारने की इच्छा रखकर आई थी, द्वेष भावना रख के आई थी, लेकिन फिर भी मां के प्रति अपने आप को पेश किया, दूध पिलाना चाहा, स्तनपान कराना चाहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस भावना को स्वीकार किया, स्तनपान किया और पूतना का उद्धार कर दिया। इसलिए पूतना का शरीर दिव्य बन गया। तो सुखदेव जी समझाते हैं कि जब पूतना जैसी चुड़ैल इतनी द्वेष भावना लेकर भगवान की हत्या करने हेतु कृष्ण को धोखा देकर सारे ब्रजवासियों को धोखा देकर आई है और उनकी मृत्यु के बाद में उनके शरीर ऐसे सुगंधित हो गया है अर्थात वो मुक्त हो चुकी है, भगवान के धाम में लौट कर गई है, उनको वहां धात्री का स्थान मिला है। अगर ऐसे द्वेषी व्यक्ति को ऐसे ऊंचा स्थान मिलता है धात्री का गोलोक वृंदावन में, तो जो माता यशोदा और अन्य गोपीगण और ब्रजवासी हैं, जिन्होंने खुद स्तनपान कराया कृष्ण को प्रेम की भावना से, जो गाय हैं जिन्होंने भी कृष्ण को अपना दूध पिलाया, उनकी क्या गति हुई होगी, उनकी कितनी ऊंची गति हुई होगी। अर्चना का मार्ग जो है बड़ा सुंदर है। अर्चना में हम क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग पदार्थ अर्पण करते हैं भक्ति भावना से, भोग अर्पण करते हैं, सुंदर सुंदर सुगंधित फूल अर्पण करते हैं, फल इत्यादि अर्पण करते हैं, और ऐसे अर्पण करने से हमारा उद्धार होता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब हम भगवान श्री कृष्ण को सुंदर फूल अर्पण करते हैं तो हमारी भलाई तो होती ही है, लेकिन साथ साथ जिस वृक्ष से हमने फूल तोड़े हैं उस वृक्ष की भी भलाई होती है, क्योंकि उस वृक्ष के फूल हमने कृष्ण को अर्पण किए हैं। जिस प्रकार से हम किसी व्यक्ति से दान लेते हैं और कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो उस व्यक्ति का भी लाभ होता है, हालांकि उस धन का कृष्ण की सेवा में हम लगाते हैं लेकिन फिर भी धन हमें वहां से मिला है, इसलिए उसका भी फायदा होता है, उसको भी लाभ होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जिस वृक्ष से भी हम फूल लेते हैं कृष्ण की सेवा के लिए, उस वृक्ष का भी उद्धार हो जाता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्चना की पद्धति कितनी सुंदर बनाई है, कितने लोगों को लाभ होता है। तो जब इसलिए किसी भी भावना से क्यों ना हो कोई भी व्यक्ति कृष्ण के पास आता है सेवा करने के लिए, तो कृष्ण वो सेवा की भावना स्वीकार करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये मुझे मारने आई है, चुड़ैल है, द्वेषी है, लेकिन स्तनपान कराना चाहती है जो कि मां का काम है, तो मैं क्या करूंगा, इसे स्वीकार करूंगा, इसकी ममता जो है ये स्वीकार करूंगा और मैं धात्री का स्थान दे दूंगा। लेकिन क्योंकि इसके हृदय में द्वेष भावना भी है तो द्वेष भावना निकालनी चाहिए। कैसे निकालनी चाहिए, तो उसे इतना कष्ट दिया, इतना दर्द दिया थोड़े क्षणों के लिए कि उस कष्ट को सहन करने से ये सारी द्वेष भावना जो पूतना के हृदय में थी सब नष्ट हो गई और पूतना पूरी तरह से शुद्ध हो गई, शुद्ध भक्त बन गई। कैसे, क्योंकि सारे पाप और पाप करने की प्रवृत्ति द्वेष की भावना जो हृदय में थी केवल उस दर्द के मारे सब खत्म हो गया। तो पूतना ने दर्द क्यों दिया, कृष्ण ने पूतना को क्यों दर्द दिया, हृदय को स्वच्छ करने के लिए। तो कृष्ण भगवान जब किसी को दंड देते हैं तो उसकी भलाई के लिए देते हैं, उसके शुद्धिकरण के लिए देते हैं। जब पूतना के हृदय में से सारा द्वेष नष्ट हो गया तो बाकी क्या रह गया, हृदय में ममता की भावना रह गई कि मैं कृष्ण को दूध पिलाना चाहती हूं, यह भावना रह गया, लेकिन किस लिए पिलाना चाहती हूं वो कारण, वो भावना नष्ट हो चुका क्योंकि कृष्ण भगवान ने उसे शुद्ध कर दिया। तो ममता की भावना जब रह गई तो मां का स्थान ही मिलना था पूतना को। तो देखिए यह है कृष्ण की कृपा, इतने कृपालु होते हैं भगवान श्री कृष्ण कि ऐसे कोई व्यक्ति द्वेष भावना लेकर भी आता है तो कृष्ण भगवान उसे स्वीकार करते हैं, बुरे को नहीं देखते, अच्छे को स्वीकार करते हैं। तो भक्तों को भी ऐसे ही देखना चाहिए, भगवान हमें सिखला रहे हैं उनके उदाहरण से कि जब अन्य लोग आते हैं, भक्त आते हैं, उनमें बुराई नहीं देखनी चाहिए, उनके अच्छे गुण क्या है वो देखने चाहिए और अच्छे गुणों का हमें गुणगान करना चाहिए। तो यह है भगवान की कृपा जिसका वर्णन उद्धव भी करने लगे। जब विदुर जी से उनकी मुलाकात हुई थी तो उस समय उद्धव गए थे भ्रमण करने के लिए। भ्रमण करते करते जब विदुर भी आए वहां पर, तो विदुर उनसे पूछताछ कर रहे थे कि आप कैसे हैं, सब ठीक ठाक है ना, यदुकुल में क्या चल रहा है, द्वारका में क्या चल रहा है, पांडव कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं, ये सारे प्रश्न जो है विदुर कर रहे थे। तो उस समय उद्धव ने जवाब दिया, बड़े सुंदर एक श्लोक है, किसी को मालूम है वो कौन सा श्लोक है? बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयाय पाप आपयत्य साध्वी लेबे गतिम यद्धात्रि उचितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। उद्धव ने कहा कि ये ऐसे दयालु कृष्ण हैं, ऐसे दयालु हैं कि जिन्होंने बकी अर्थात बकासुर की बहन, पूतना बकासुर नाम के असुर की बहन थी, तो बका और बकी, तो अहो बकीयं स्तन कालकूटम, तो उद्धव कहने लगे कि ये बकी या पूतना ऐसी थी जिन्होंने अपने स्तन पे कालकूट भयंकर जहरीला विष का लेप लगाया हुआ था। जिघांसया बड़े द्वेष भावना से आपयत पिलाना चाहा, ती प्राप्त हुई कौन से? धात्री उचितम, जैसे एक धात्री या मां के लिए उचित है ऐसे स्थान उसे प्राप्त हुआ। और फिर उद्धव आगे चल के कहते हैं कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, इससे ज्यादा कोई करुणामयी या दयालु व्यक्ति के शरण में कैसे ले सकता हूं। दूसरे शब्दों में कृष्ण से बड़ा दयालु कौन हो सकता है? इतने दयालु है कृष्ण कि पूतना जैसी असाध्वी राक्षसी चुड़ैल व्यक्ति को, जो कि उसे मारने के लिए आई है, ऐसे चुड़ैल को उसने मां का स्थान अपने धाम में दे दिया। तो यह है कृष्ण की कृपा। कृष्ण के चरित्र को समझने के लिए हमें भक्तों की सहायता लेनी चाहिए, जैसे सुखदेव गोस्वामी और उद्धव। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी भी एक सुंदर ढंग से बताते हैं कि जो भी ये पूतना के वध की लीला सुनता है तो उसे गोविंद के चरणों की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। वो कहते हैं यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्ण स्यार्भकम अद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्थ्यो गोविंदे लभते रतिम। वो कहते हैं कि जो भी ये पूतना मोक्ष का वध की लीला सुनते हैं, कृष्णस्य अर्भकम अद्भुतम, अर्भकम मतलब बाल लीला, और अद्भुतम ऐसे कृष्ण के बाल लीला जैसे कि पूतना वध, ऐसे जो अद्भुत लीलाओं का श्रवण शृणुयाच शृण्वतम श्रद्धा से सुनते हैं तो क्या होता है, उनको लाभ क्या होता है? गोविंद लभते रतिम, गोविंद अर्थात श्री कृष्ण के प्रति रति या आसक्ति या प्रेम की प्राप्ति होती है। तो ये सुखदेव गोस्वामी की आशीर्वाद है, का वरदान है उन लोगों के लिए जो श्रद्धा से भक्ति भाव से कृष्ण के बाल लीलाओं के या कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते हैं, जैसे कि पूतना के मोक्ष की लीला। तो इसलिए हमें ऐसे लीलाओं सुनते समय सोना नहीं चाहिए। यहां भगवान श्री कृष्ण सुखदेव गोस्वामी वो वरदान दे रहे हैं कि केवल श्रद्धा से सुनने मात्र से कृष्ण प्रेम हमें मिल सकता है, और इधर हम फिर हम ऐसे सोते रहे क्लास में तो फिर क्या लाभ है? इतना अवसर हमें मिल रहा है, सुंदर अवसर मिल रहा है हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए। तो ऐसे कृष्ण लीला का वर्णन जब होता है तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, हमें ध्यान से सुनना चाहिए ताकि पूरा पूरा लाभ इसका उठा पाए। चाहे वक्ता बिल्कुल अयोग्य हो जैसे अब है, लेकिन फिर भी सुनना चाहिए, क्योंकि लीला तो वही है, लीला तो कृष्ण की ही है, इसलिए हमें ध्यान से सुनना चाहिए। आचार्य बताते हैं सुंदर सुंदर ढंग से इस लीला की टीका भी की है आचार्य ने। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि पूतना वास्तव में अपने पिछले जन्म में बलि महाराज की एक छोटी बहन थी जिनका नाम था रत्नमाला। गर्ग संहिता में बताया गया है कि वास्तव में उनकी पुत्री थी। खैर चाहे पुत्री हो या छोटी बहन हो, बात एक ही है कि जब वामन देव ने ये देखा, जब रत्नमाला ने यह देखा कि वामन देव ने बलि महाराज से सब कुछ छीन लिया है, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। लेकिन पहले जब रत्नमाला ने देखा कि वामन देव आए हैं, इतना सुंदर रूप है, बाल स्वरूप है, कि काश मैं इसको स्तनपान करा सकूं, ममता की भावना रत्नमाला के हृदय में जागृत हुआ। वामन देव को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करना चाहा रत्नमाला ने, लेकिन जब रत्नमाला ने देखा कि अभी वामन देव ने त्रिविक्रम का रूप धारण किया है, तीन कदम में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया उन्होंने, और दो कदम में और तीसरा कदम बलि महाराज के सर पर रखने जा रहे हैं, और बलि महाराज से सब कुछ हरण कर लिया है, तब द्वेष भावना रत्नमाला के हृदय में जागृत हुई कि अरे काश मैं इसको विष पिला सकूं और मार सकूं, मेरे भाई से सब कुछ ले लिया, मेरे भाई से ले लिया मतलब मेरे से भी ले लिया। जब भाई का या पिता का सब कुछ चला जाए तो अपने पास भी क्या रह जाएगा, तो सोचने लगी काश मैं इसको विष पिला सकूं। तो भगवान इतने कृपालु हैं, सारे हर एक व्यक्ति की इच्छा पूरी करते हैं, तो दोनों इच्छाओं को पूर्ति कर दी एक ही साथ में, इसलिए वो पूतना की लीला हुई। तब पूतना ने स्तनपान भी कराया जो कि रत्नमाला की इच्छा थी, और विष भी पिलाया, लेकिन साथ साथ में कृष्ण ने क्या देखा, ये नहीं देखा कि विष है, ये देखा कि दूध पिलाने जा रही है, तो दूध भी पिया, साथ साथ प्राण भी खींच लिए और भेज दिया गोलोक वृंदावन धात्री कर स्थान देकर। तो ये है कृपा। भक्त विनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत में समझाते हैं कि हर एक असुर जिसका वध कृष्ण भगवान ने वृंदावन में किया, हमारे हृदय के अलग अलग अनर्थों के प्रतीक हैं। तो पूतना राक्षसी झूठे या मिथ्या गुरु के प्रतीक हैं, जो कि लोगों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, जो कि या तो भोगवाद सिखाते हैं या निर्विशेषवाद सिखाते हैं, या तो फिर अपने शिष्य के तथाकथित शिष्य के स्थान को न देखते हुए उनको उपदेश करते हैं। भले ऐसा तथाकथित गुरु थोड़ी बहुत भक्ति के कार्य भी क्यों न कर रहा हो, जैसे कभी कभी संकीर्तन भी कर रहा हो, लेकिन शुद्ध भक्त के निर्णय या निष्कर्ष नहीं मालूम है उसे, और अपने साक्षात्कार से अधिक वो लोगों को मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है। तो ऐसे झूठे गुरु के प्रतीक है पूतना। और भक्त विनोद ठाकुर बताते हैं कि जो हमारे मन में गुरु है, भौतिकवादी मन, जो भौतिकवाद भौतिक मन है हमारे अंदर, जो हमें बताता है, जिससे कि हम भौतिक गणना से भौतिक दृष्टि से सब चीजों को देखते हैं, भौतिक न्याय इस्तेमाल कर आध्यात्मिक क्षेत्र को का नापतोल करने का प्रयास करते हैं, विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, ऐसा भौतिक मन भी पूतना का प्रतीक है। तो पूतना ऐसे गुरु दो प्रकार के गुरु के प्रतीक है। एक है जो बाहर का गुरु, जो भोगवाद मायावाद या गलत मार्गदर्शन सिखाता है दूसरों को, देता है लोगों को, और दूसरे प्रकार का गुरु हमारे हृदय में है, जो भौतिक न्याय से सब कुछ देखता है। और आगे चलकर इसी बात का विस्तार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर करते हैं बहुत ही सुंदर ढंग से, और वो बताते हैं कि पूतना तो ऐसे मिथ्या गुरु तो है ही। कंस कौन है? कंस है वो भौतिकवादी लोगों के राजा, मुख्य भौतिकवादी लोग, जो कि भौतिक न्याय के ऊपर निर्भर होते हैं और आध्यात्मिक जीवन से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं। जहां भी वो देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की वृद्धि का विकास हो रहा है, का मुख दिखाई पड़ रहा है वहां, तो वहां पर वो क्या करते हैं, वो अपने पूतनाओं को भेजते हैं। कौन है पूतना? झूठे गुरु। वो केवल भौतिक गणना से देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक तत्व जो है बिल्कुल झूठ है, तो इनको काटने के लिए ऐसे उनके साथी जो झूठे गुरु हैं, मिथ्या गुरु हैं, भौतिकवादी गुरु, उनको भेजते हैं। और उनको भेजकर सच्चे धर्म को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती समझाते हैं कि जो पहले से स्थित जो धर्म है, ऑर्गेनाइज रिलीजन, जैसे अलग अलग बड़े मंदिर हैं, चर्च है, मस्जिद है, ऐसे चीजें जो हैं, वो वास्तव में भोगवाद का ही प्रचार करते हैं, नास्तिकवाद का ही प्रचार करते हैं, लेकिन केवल अपने आप को वो उन्होंने वेश बना दिया है भक्ति का। बाहरी रूप है भक्ति का, लेकिन अंदर से वही ऐसे ही सिद्धांतों का, अपसिद्धांतों का प्रचार करते हैं। वो कहते हैं कि आप ऐसे नियम पालन करो, ऐसे नियम पालन करो, लेकिन ऐसे नियम पालन करने से उनके जो अनुयायी हैं वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते नहीं है, उनकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, मुसलमान धर्म हो, हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कई लोग भी हो जो व्रत रखते हैं, सोमवार को यहां जाना वहां जाना। हम देखते हैं नियमों का पालन करने के बाद भी हृदय का परिवर्तन नहीं होता है, वही भौतिकवादी मन रहता है, वही भोगवाद का के सिद्धांत हृदय में रहते हैं। ऐसे क्यों होता है? आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूतना जैसे मिथ्या गुरुओं का पालन कर रहे हैं, कंस जैसे लोग उनको कहते हैं भोगवाद में लगो। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि जब सच्चे धर्म का उदय होगा, सनातन धर्म का वास्तव में जब उदय होगा, और ऐसे धर्म का प्रचार करने वाला जो प्रतिनिधि है उसका उदय होगा, तो ऐसे मिथ्या गुरु, पूतना जैसे गुरु और ऐसे कंस जैसे भोगवादी लोग और उनका वाद जो है, उनका दर्शन जो है, वो खड़ा नहीं हो पाएगा। और वास्तव में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य प्रभुपाद जी ने, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस सिद्धांत को सिद्ध करके ठहराया, दिखाया। वास्तव में जब प्रभुपाद जी गए पाश्चात्य देश तारने, किस चीज से तारने के लिए गए थे पश्चिम देशों को? निर्विशेष शून्यवादी, ऐसे भोगवाद, निर्विशेषवाद, शून्यवाद के दर्शनों को भंग करने के लिए, नष्ट करने के लिए उन्हीं के शिष्य गए थे, और शुद्ध भक्तिवाद या शुद्ध भक्ति के दर्शन को उन्होंने पेश किया सबके सामने। तो इस प्रकार से पूतना के वध की जो लीला है, आचार्यों के दृष्टिकोण से, आचार्यों के सुंदर सुंदर टीका सहित, उनके साक्षात्कार सहित, उनके मुखारविंद से आने वाली जो ऐसे रस का पान अगर हम करेंगे, तो हमें अवश्य, जैसे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, हमें गोविंद के चरणों के प्रति रति या आसक्ति या शुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। तो इसी प्रकार से हर एक लीला का श्रवण हमें इसी तरह से करना चाहिए, और जैसे जैसे हमारे नियमों का पालन करेंगे और भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, वैसे वैसे इन लीलाओं का श्रवण करने के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।
अभी थी और उसको सब सिद्धि भी प्राप्त थी, तो उसको ये मालूम नहीं था कि इतने बच्चे मारने से पहले कि भगवान श्री कृष्ण यशोदा के घर में ही है।
प्रश्न क्या है? उनको मालूम नहीं था कि था,
जब उनको सब सिद्धि थी तो उतना इतना मालूम नहीं था कि जो कृष्ण है जिनको वो मारने के लिए आई है वो नंद के घर में ही है,
इसलिए तो मारने आए थे वहां। अच्छा, मारने के पहले उनको मालूम नहीं था क्या? नहीं नहीं, उधर उनको नहीं मालूम था ना, वो तो कंस की आज्ञा का पालन कर रहे थे कि हर जगह जाओ बच्चों को मारो, और जब कृष्ण को देखा तभी उसको पता चला कि ये तो साक्षात ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला है, ये असुरों के वध के लिए ये आया है, इसने जन्म लिया है, ये तो साक्षात भगवान ही है, तब पता चला। लेकिन केवल पता चलने से क्या फायदा? हिरण्यकश्यप को मालूम था भगवान विष्णु है, हिरण्याक्ष को मालूम था, जरासंध को मालूम था, सबको मालूम था, लेकिन द्वेष भावना, असुरी प्रवृत्ति इतनी प्रबल होती है कि ये जानते हुए भी वो सोचते हैं कि मुझे इसका वध करना चाहिए, इनका वध करना चाहिए, मैं इनसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, तो पूतना ने ये देखा समझा, लेकिन फिर भी सोचा कि मुझे करना चाहिए ऐसा। यह है असुरी प्रवृत्ति। और कोई प्रश्न?
मैंने देखा है कि जब हम फूल भगवान के वास्ते चढ़ाते हैं तो पेड़ का उद्धार हो जाता है, वो जो दान देते हैं वो भी भगवान के हम लगाते हैं तो उसका भी उद्धार हो जाते हैं। लेकिन हम जब भगवान के नजदीक जाते हैं, हम हरे कृष्ण का महामंत्र बोलते हैं तो नामा अपराध भी करते हैं, सेवा अपराध करते हैं, अर्चन भगवान की सेवा करते हुए टाइम में भी अपराध करते हैं, तो ये अपराध से बाहर निकलने के वास्ते हम क्या करना चाहिए?
अलग अलग प्रकार के अपराध होते हैं, नाम अपराध, सेवा अपराध। जो सेवा अपराध वगैरह हैं वो हरि नाम से मिट सकते हैं। इन सारे अनर्थों के बारे में चर्चा और अनर्थों का क्रमशः निवारण कैसे होता है भक्ति के अलग अलग अंगों का पालन करने से, इसका सुंदर विश्लेषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कदम्बिनी नाम के ग्रंथ में करते हैं। कहीं एक दिन इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग निवारण की पद्धतियां बताई गई हैं। सेवा अपराध से करने से केवल हरिनाम करने से सब मिट जाते हैं। नाम अपराध के लिए भी अलग अलग निवारण की पद्धतियां बताई हुई हैं। सबसे खतरनाक जो अपराध होता है जिसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है वो क्या है? क्या है? सुना नहीं? वैष्णव अपराध सबसे बड़ा अपराध होता है। वैष्णव अपराध के लिए कृष्ण के हाथ से भी बाहर है वो, कृष्ण भी इसके निवारण नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? केवल वैष्णव कर सकते हैं। तो जो हम अपराध करते हैं जाने अनजाने में, इसलिए हमें पहली बात तो बहुत सावधान रहना चाहिए, होशियारी से सेवा करनी चाहिए, लापरवाही से नहीं। हमेशा समझना चाहिए कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की श्री विग्रह है, भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद है, भगवान के भक्त हैं। तो हर स्थिति में कृष्ण से संबंधित सबको देखना चाहिए, सब चीजों को देखना चाहिए, तदियानाम समर्चनम, तो फिर अपराध कम होंगे। ये पहली बात है सावधानी से। दूसरी बात, हमेशा नम्र रहना चाहिए वैष्णवों के बीच में और कहीं भी, ताकि हमारे अंदर घमंड न हो। अपराध क्यों होते हैं? लापरवाही से होते हैं या तो घमंड से होते हैं, या तो दोनों से होते हैं। जब हम घमंड आ जाता है तो लापरवाही भी आ जाती है, इसलिए घमंड ही हमारे सबसे बड़ा शत्रु है। घमंड से बचकर रहेंगे, नम्र रहेंगे, प्रेम भावना बनाए रहेंगे तो अपराध कम होंगे। और साथ साथ में भगवान और वैष्णवों की कृपा की याचना करनी चाहिए कि हमें अपराधों से मुक्त कर दीजिए और अपराध करने की प्रवृत्ति या आदत जो है उससे भी हमें मुक्त कर दीजिए। ठीक है।
हरे कृष्णा। जब ये अभी पुतना को देखने, भगवान को देखने के बाद मालूम हुआ कि सर्व विनाशक है, मुझे मार सकते हैं, तो उसके भावना द्वेष भावना से वो भगवान को फिर भी उसके बाद में उसको द्वेष भावना थी उसको मारने के लिए चले। लेकिन हमें भी कैसा अभी कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ये सब हम जो भी कर रहे हैं वो देख रहे हैं, और भगवान हमें भी ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हाथ से अपराध होता है, क्या कुछ तो हम गलत कार्य कर बैठते हैं, तो ऐसा क्यों होता है?
संक्षेप में आपका प्रश्न है कि हम गलत कार्य क्यों करते हैं, है ना? क्योंकि हम आदत से मजबूर हैं, जानते हुए भी हम गलत काम करते हैं। वो श्रद्धा अभी तक हृदय में नहीं आई है कि वास्तव में ये वैष्णव का अपराध करने से कितना खतरा हो सकता है, भगवान का विग्रह है कि प्रतिमा है कोई, है ना? बैठे हैं भगवान, ठीक है, अब अपना गप्पे लगाएंगे, गपशप करेंगे, कुछ करेंगे, तो ये श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, कम है बहुत। इसलिए हम चलता है इसलिए कर लेते हैं। एक आध बार इधर उनको बोल भी लिया, कुछ गड़बड़ कर भी दिया तो क्या होगा, किसने देखा है? श्रद्धा कम। अगर हम जानते कि वैष्णव अपराध करने से या दूसरे अपराध करने से क्या परिणाम होगा तो अवश्य नहीं करते। अभी हम खून क्यों नहीं करते? जानते खून करने से क्या होने, इसके बारे में कोई संशय नहीं है, लेकिन इसके बारे में संशय है, वो कह रहे छूट भी जा सकते हैं, हो सकता है भगवान थोड़े उधर देख रहे हो, देखेंगे नहीं अपराध कर रहे हैं, तो श्रद्धा नहीं है पूरी तरह से। इसलिए जानते हुए भी हम नहीं जानते हैं, पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं।
तो इसके लिए क्या करना चाहिए?
देखना चाहिए, जानना चाहिए। श्रद्धा के लिए हमें कार्य कर लापरवाही नहीं करनी चाहिए, भगवान से कृपा याचना करनी चाहिए कि कृपा करके वो साक्षात्कार मेरे हृदय में प्रदान कर दीजिए, मैं कहीं लापरवाही का शिकार न बनूं, घमंड का शिकार न बनूं। वैष्णव को हमेशा सम्मान से प्रेम के उनके साथ पे रहूं, ठीक है? और कोई प्रश्न?
भगवान श्री कृष्ण सबको बोलते, किसी भी भाव से कोई भी आए उनके पास तो वो सम्मान देते हैं, वैसे उन्होंने भक्तों को भी सिखाए वैसे रहने के लिए। शत्रु भी आए तो उनको सम्मान देना चाहिए ऐसे कहा जाता है, लेकिन जब शत्रु आए तो उसका भाव बुरा रहे और उसके कारण हम लोगों को तकलीफ हो तो उससे कैसे व्यवहार करना चाहिए?
जैसे भगवान ने ही किया ना, पूतना आई थी तो भगवान ने क्या किया, आंख बंद किया, लेकिन भगवान आंख बंद करने के बाद भी देख सकते हैं, लेकिन हम आंख बंद करने के बाद नहीं देख सकते। इसलिए कोई चोर हमारे घर में आए और हम आंख बंद करके बैठे हैं, ठीक नहीं है, आंख खोल के क्या देखना है, क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने आक्रमण भी तो किया, पूतना का वध भी कर दिया साथ साथ। जैसे असुर, इतने सारे असुर कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, प्रेम करते थे उन सब असुरों से, लेकिन उनको सबक भी सिखाया। हम ये नहीं कह रहे कि हमको जाके हर जगह सबक सिखाना है लोगों को, लेकिन अवश्य इतना कहना जरूरी है कि अपना संरक्षण करना, अपने शरीर का, अपने धन का, अपने परिवार के सदस्यों का, ये हमारा कर्तव्य है और हमें करना चाहिए। तो शत्रु कैसे है, किस प्रकार का शत्रु है, किस क्षेत्र में शत्रु है, भक्ति में शत्रु है कि बाहर शत्रु है, कैसे है, किस प्रकार का शत्रु है, कैसी परिस्थिति है, उसको देश काल पात्र के अनुसार फिर हमें जो उचित है वैसे प्रतिक्रिया हमें करनी चाहिए, ठीक है? चोर घर में आए तो चोर चोर जोर से चिल्लाना चाहिए, या तो फिर लाठी लेकर उसे मारने के लिए आगे चलना चाहिए। तो जैसे परिस्थिति वैसे अलग अलग व्यवहार हमें करना होगा, लेकिन हृदय में किसी से द्वेष भावना नहीं रखनी है।
प्रभु नित्यानंद श्रीयाद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Sab zor se boliye sab zor se gaiye
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna